तो आज के इस गहराई से अध्ययन में हम एक बहुत ही एक्साइटिंग टॉपिक शुरू करने वाले हैं।
बिल्कुल, और आज का हमारा मिशन बहुत ही क्लियर है। हम अपने सोर्सेज और नोट्स की मदद से अर्थ के अलग अलग चेहरों को समझेंगे।
हाँ, मतलब हम जानेंगे कि आखिर लैंडफॉर्म्स क्या होते हैं।
और सिर्फ लैंडफॉर्म्स ही नहीं, बल्कि वहां रहने वाले इंसानों और वहां के फ्लोरा और फौना की लाइफ कैसी होती है।
फ्लोरा और फौना मतलब पेड़ पौधे और जानवर। तो इस डीप डाइव को ना एक मजेदार रोड ट्रिप की कहानी से शुरू करते हैं।
अरे वाह, रोड ट्रिप का आइडिया तो बहुत बढ़िया है।
तो इमेजिन करो कि हम एक गाड़ी में बैठे हैं। हमने अपनी ट्रिप शुरू की झारखंड के छोटा नागपुर से।
जहां की जमीन थोड़ी ऊबड़ खाबड़ और ऊंची है।
बिल्कुल। फिर हम वहां से चले और उत्तर प्रदेश के प्रयागराज पहुंचे।
एकदम फ्लैट जमीन, दूर दूर तक सिर्फ सीधे रास्ते,
हाँ, और आखिरी में हम चलते चलते उत्तराखंड के अल्मोरा की पहाड़ियों पर पहुंच गए।
जहां रास्ते एकदम घुमावदार हो जाते हैं और ऊंचाई बहुत ज्यादा।
बाबा, आपने नोटिस किया कि इस एक ट्रिप में नज़ारे बिल्कुल बदल जाते हैं?
ऐसा इसलिए होता है क्योंकि हमारी अर्थ की सतह हर जगह एक जैसी नहीं है।
हाँ, कहीं ऊंची कहीं नीची।
बिल्कुल, और जमीन के इन्हीं अलग अलग आकारों को लैंडफॉर्म्स कहते हैं।
और ये लैंडफॉर्म्स कोई एक या दो दिन में नहीं बनते ना।
बिल्कुल नहीं, इन्हें बनने में मिलियंस ऑफ इयर्स यानी लाखों साल लग जाते हैं।
ओके, लेट्स अनपैक दिस। सबसे पहले बात करते हैं माउंटेन्स की। पहाड़ों का जादू ही अलग होता है।
हाँ, माउंटेन्स की बनावट बहुत यूनिक होती है।
अगर ध्यान से देखें तो माउंटेन्स का जो बेस होता है यानी आधार, वो बहुत चौड़ा होता है।
और जैसे जैसे हम ऊपर जाते हैं, उनकी जो समिट होती है यानी चोटी, वो बहुत पतली और नुकीली हो जाती है।
अच्छा, जो बच्चे कश्मीर या लद्दाख या सिक्किम में नहीं रहते, उनके लिए स्नो को समझना थोड़ा मुश्किल हो सकता है।
हाँ, क्योंकि स्नो और हेल यानी ओले असल में कोई रुई नहीं बल्कि ठोस पानी है।
बिल्कुल। जब हम बहुत ऊंचाई पर जाते हैं यानी हाई एल्टीट्यूड पर, तो हवा बहुत ठंडी हो जाती है
और इसी वजह से आसमान से गिरने वाला पानी जम जाता है।
और विज्ञान में इस आसमान से पानी गिरने को प्रेसिपिटेशन कहते हैं।
सही कहा, तो हाई एल्टीट्यूड पर यही प्रेसिपिटेशन स्नो के रूप में होता है।
पर सारे माउंटेन्स एक जैसे नहीं होते ना। मतलब कुछ माउंटेन्स बहुत नुकीले होते हैं और कुछ एकदम गोल।
हाँ, इसका एक बहुत ही इंटरेस्टिंग साइंटिफिक रीजन है। कुछ माउंटेन्स को यंग माउंटेन्स कहा जाता है।
मतलब जवान पहाड़, जैसे हमारे हिमालयस।
बिल्कुल, हिमालयाज बहुत ऊंचे और नुकीले होते हैं क्योंकि वो अभी नए हैं।
और कुछ माउंटेन्स ओल्ड होते हैं।
हाँ, ओल्ड माउंटेन्स जैसे अरावली की पहाड़ियाँ,
जो समय के साथ हवा और पानी से घिस घिस कर गोल हो गए हैं।
बिल्कुल सही, पूरी दुनिया में ऐसे कई फेमस पहाड़ हैं,
जैसे साउथ अमेरिका में माउंट अकोनकुगा है
और अफ्रीका में माउंट किलिमंजारो है। इसकी खास बात यह है कि ये किसी बड़ी रेंज का हिस्सा नहीं है बल्कि अकेला खड़ा है।
अरे वाह। और यूरोप के एल्प्स में मॉन्ट ब्लॉ है।
और अगर साउथ इंडिया की बात करें तो वहां का सबसे ऊंचा पहाड़ अनामुदी है, जिसे अनाई पीक भी कहते हैं।
पहाड़ों पर ना जंगल भी बहुत अलग तरह के होते हैं। वहां माउंटेन फॉरेस्ट पाए जाते हैं
जहाँ के पेड़ों का आकार भी बहुत खास होता है।
हाँ, वहां कॉनिफर ट्रीज मिलते हैं जैसे पाइन और देवदार,
जो एकदम शंकु या कोन के आकार के होते हैं ताकि बर्फ आसानी से नीचे फिसल जाए।
पहाड़ों की इसी महानता को देखकर महान कवि कालिदासा ने अपनी कविता कुमारा संभवा में हिमालयस को लॉर्ड ऑफ माउंटेन्स कहा था।
सच में, पहाड़ होते ही इतने भव्य हैं और वहां का फौना भी उतना ही स्पेशल है।
फौना मतलब वहां के जानवर।
हाँ, जैसे स्नो लेपर्ड जिसके बाल बहुत घने होते हैं, और गोल्डन ईगल,
और याक भी जिसके फेफड़े बहुत बड़े होते हैं ताकि वो कम ऑक्सीजन में भी सांस ले सके।
इसके अलावा कैनेडियन लिंक्स और हिमालयन कार जैसे जानवर भी इन्हीं ऊंचाइयों पर रहते हैं।
लेकिन पहाड़ों पर लाइफ आसान बिल्कुल नहीं है। वहां जमीन फ्लैट नहीं होती,
इसीलिए वहां ढलान पर सीढ़ियां बनाकर टेरेस फार्मिंग की जाती है
और ज्यादातर लोग वहां टूरिज्म और पैराग्लाइडिंग के लिए जाते हैं।
लेकिन इन सब के साथ वहाँ कुछ बहुत बड़े चैलेंजेस भी होते हैं।
हाँ, जैसे एवलांच यानी बर्फ का अचानक से खिसकना,
और लैंडस्लाइड जहाँ पूरी की पूरी जमीन खिसक कर नीचे आ जाती है।
क्लाउड बर्स्ट यानी बादल फटना भी एक बहुत बड़ा खतरा है,
जिससे फ्लैश फ्लड या अचानक आई बाढ़ आ जाती है और बहुत नुकसान होता है।
पर इतनी मुश्किलों के बाद भी इंसानों ने कभी हार नहीं मानी। मुझे बचिंद्रीपाल की कहानी याद आ रही है।
हाँ, जो 1984 में माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली पहली भारतीय महिला बनी।
और अरुणिमा सिन्हा की कहानी तो और भी इंस्पायरिंग है।
बिल्कुल, एक भयानक एक्सीडेंट में अपना पैर खोने के बाद भी उन्होंने हार नहीं मानी।
हाँ, उन्होंने 2013 में माउंट एवरेस्ट की चोटी को छुआ। ये सच में कमाल है।
तो अब टाइम है हमारे रिमेम्बर दिस का।
माउंट एवरेस्ट दुनिया का सबसे ऊंचा माउंटेन है। बछेंद्रीपाल ने 1984 में और अरुणिमा सिन्हा ने 2013 में माउंट एवरेस्ट पर चढ़ाई की थी।
तो पहाड़ों के बाद अब हम एक और कमाल के लैंडफॉर्म की तरफ चलते हैं,
जिसे समझने के लिए ना एक बहुत बड़ी टेबल के बारे में सोचो।
एक ऐसी टेबल जो जमीन से बहुत ऊंची उठी हो।
हाँ, लेकिन ऊपर से बिल्कुल फ्लैट या सपाट हो, इसे प्लैटो कहते हैं।
और अगर दुनिया के सबसे बड़े प्लैटो की बात करें तो वो टिबेटन प्लैटो है,
जो दुनिया का सबसे बड़ा और ऊंचा प्लैटो है।
इसकी ऊंचाई लगभग 4,500 मीटर्स है।
और ये इतना लंबा है, मतलब लगभग 2500 किलोमीटर लंबा।
हाँ, मतलब चंडीगढ़ से कन्याकुमारी जितनी दूर है उतना लंबा है ये प्लैटो।
Here's where it gets really interesting. प्लैटो सिर्फ ऊंची जमीन नहीं है।
बिल्कुल, उन्हें स्टोर हाउसेज ऑफ मिनरल्स भी कहा जाता है,
यानी खनिजों का खजाना।
हाँ, क्योंकि बहुत सारे प्लैटोस ज्वालामुखी के लावा से बने हैं।
जैसे ईस्ट अफ्रीकन प्लैटो में गोल्ड और डायमंड यानी हीरे मिलते हैं।
और हमारे भारत के छोटा नागपुर प्लैटो में आयरन और कोल बहुत मात्रा में मिलता है।
और जो डेक्कन प्लैटो है ना, वो बहुत पुराना है और ज्वालामुखी के लावा से बना है।
इसीलिए वहाँ की मिट्टी काली होती है, जो खेती के लिए बहुत अच्छी मानी जाती है।
प्लैटोस की एक और बहुत मजेदार चीज होती है वॉटरफॉल्स, यानी पानी के झरने।
हाँ, जब नदियाँ प्लैटो के एकदम किनारे से नीचे गिरती हैं तो बहुत शानदार वॉटरफॉल्स बनते हैं।
जैसे अफ्रीका में जम्बेजी रिवर पर विक्टोरिया फॉल्स है,
और इंडिया में सुवर्णरेखा रिवर पर हंड्रू फॉल्स है।
वेस्टर्न घाट्स में जोग फॉल्स बहुत फेमस है,
और मेघालय के चेरापुंजी प्लैटो में तो नोहाखली फॉल्स है,
जो सीधा 340 मीटर नीचे गिरता है।
तो चलिए बढ़ते हैं हमारे अगले रिमेम्बर दिस की तरफ।
टिबेटन प्लैटो को हूफ ऑफ द वर्ल्ड या दुनिया की छत कहा जाता है। प्लैटोस में मिनरल्स जैसे गोल्ड और कोल मिलते हैं।
पहाड़ों और प्लैटोस के बाद एक बहुत ही बेसिक सवाल आता है।
हाँ, कि आखिर ज्यादातर लोग रहते कहाँ हैं?
और इसका बहुत ही सिंपल जवाब है, प्लेन्स में, यानी मैदानों में।
प्लेन्स बिल्कुल फ्लैट जमीन होती है जो सी लेवल से 300 मीटर से ज्यादा ऊंची नहीं होती।
लेकिन ये प्लेन्स बनते कैसे हैं, इसका कॉज इफेक्ट समझना बहुत जरूरी है।
हाँ, जब रिवर्स ऊंचे पहाड़ों से बहुत तेज स्पीड में नीचे आती हैं,
तो वो अपने साथ छोटे छोटे पत्थर और बालू मिट्टी लेकर आती है,
और इन्हीं पत्थरों और मिट्टी को सेडिमेंट्स कहते हैं।
और जैसे ही नदियां प्लेन्स में आती हैं, उनकी स्पीड कम हो जाती है,
तो वो इन सारे सेडिमेंट्स को प्लेन्स में बिछा देती हैं।
भारत की सबसे बड़ी रिवर गंगा है, जो हिमालय से निकलती है,
और यमुना और घाघरा जैसी रिवर्स इसकी ट्रिब्यूटरीज यानी सहायक नदियां हैं।
नदियों के लाए गए इन सेडिमेंट्स की वजह से प्लेन्स की मिट्टी बहुत ज्यादा उपजाऊ हो जाती है।
हाँ, जो एग्रीकल्चर के लिए एकदम परफेक्ट होती है।
इसीलिए दुनिया की पहली सिविलाइजेशंस या सभ्यताएं नदियों के किनारे इन्हीं प्लेन्स में शुरू हुई,
और आज भी सिर्फ भारत के गंगा प्लेन में लगभग 40 करोड़ लोग रहते हैं,
क्योंकि यहाँ घर बनाना और एग्रीकल्चर करना सबसे आसान है।
तो यहाँ आता है हमारा रिमेम्बर दिस, प्लेन्स नदियों द्वारा लाए गए सेडिमेंट से बनते हैं। प्लेन्स की मिट्टी एग्रीकल्चर के लिए सबसे अच्छी होती है।
अब हमने ऊंचे पहाड़ों और उपजाऊ मैदानों की बात कर ली,
लेकिन एक और बहुत ही दिलचस्प लैंडफॉर्म है, डेजर्ट यानी रेगिस्तान।
जब भी हम डेजर्ट के बारे में सोचते हैं तो हमें सिर्फ गर्मी और रेत याद आती है।
हाँ, लेकिन असल में डेजर्ट की पहचान वहाँ की बहुत ही कम प्रेसिपिटेशन से होती है।
मतलब जहाँ बारिश बहुत ही कम होती है वो डेजर्ट होता है।
तो इसका मतलब डेजर्ट सिर्फ गर्म नहीं होते।
बिल्कुल नहीं, हॉट डेजर्ट्स तो होते ही हैं, जैसे अफ्रीका का सहारा और भारत का थार डेजर्ट।
लेकिन कोल्ड डेजर्ट्स भी होते हैं जहाँ बहुत ठंड होती है,
जैसे एशिया का गोबी डेजर्ट जो एक कोल्ड डेजर्ट है,
और अंटार्कटिका भी, वो बर्फ से ढका है लेकिन बारिश ना के बराबर होती है, इसलिए वो भी डेजर्ट है।
इतने मुश्किल हालात के बाद भी इंसानों की रेजिलियंस देखने लायक है।
रेजिलियंस मतलब मुसीबतों से लड़ने की ताकत। लोग वहाँ भी रहना सीख गए।
हाँ, थार डेजर्ट में लोग कितने प्यारे लोक गीत गाते हैं,
जो दिखाता है कि इंसान किसी भी माहौल में खुशी ढूंढ सकता है।
तो अब बारी है इस सेक्शन के रिमेम्बर दिस की।
डेजर्ट सिर्फ गर्म नहीं होते, अंटार्कटिका और गोबी जैसे कोल्ड डेजर्ट्स भी होते हैं। इंसान अपनी रेजिलियंस से हर लैंडफॉर्म में रह सकता है।
तो आज के इस लंबी और मजेदार जर्नी में हमने काफी कुछ कवर कर लिया।
हाँ, एक छोटा सा रिविजन कर लेते हैं।
हमने ऊंचे माउंटेन्स और उनके नुकीले शिखरों के बारे में जाना,
और खजानों से भरे ऊंचे प्लेटोस के बारे में भी बात की।
फिर हमने देखा कि खेती और एग्रीकल्चर के लिए प्लेन्स कितने बढ़िया होते हैं,
और आखिर में हमने सूखे और कम प्रेसिपिटेशन वाले डेजर्ट्स को समझा।
हर लैंडफॉर्म की अपनी अलग चुनौतियां हैं और अलग मौके भी।
तो अगली बार जब आप घर से बाहर जाएं, तो अपने आसपास जरूर देखें
और सोचें कि आप किस लैंडफॉर्म पर खड़े हैं।
बिल्कुल, लेकिन जाने से पहले एक बहुत ही मजेदार बात सोचकर देखिए।
जरा सोचिए, नदियां लाखों सालों से पहाड़ों को काटकर अपने साथ सेडिमेंट्स ला रही हैं।
हाँ, और उन सेडिमेंट से नीचे प्लेन्स बन रहे हैं, मतलब पहाड़ घिस रहे हैं।
लेकिन दूसरी तरफ हिमालयाज जैसे माउंटेन्स आज भी ऊंचाई में बढ़ रहे हैं, क्योंकि जमीन के नीचे की प्लेट्स उन्हें ऊपर धकेल रही हैं।
तो लाखों साल बाद ये नदियां और प्लेन्स कैसे दिखेंगे?
क्या पहाड़ों की ऊंचाई और नदियों के कटाव के बीच हमेशा ये रेस चलती रहेगी?
ये सच में सोचने वाली बात है। तो इसी प्रोवोकेटिव थॉट के साथ आज की डीप डाइव को यहीं खत्म करते हैं।